Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, बच्चों के खान पान पर, उनके शारीरिक विकास पर, उनकी सोच पर, साथ ही साथ उनका होलसम ग्रोथ पर हम ध्यान तो दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई मन की बीमारी, हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे बच्चे पर कोई ना कोई मन की बीमारी तो नहीं है। उसके बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है मन की बीमारियों के ऊपर।
अच्छी,
आप खुद एक साइकियाट्रिस्ट हैं, साथ ही साथ आपने स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, तो आई थिंक जो एक होलसम ग्रोथ के लिए, एक बच्चे के सही विकास के लिए, यू विल बी द बेस्ट जज, ताकि आप स्पिरिचुअली भी बच्चों को साउंड बना सके, साथ ही साथ मेंटली भी कोई भी तरह की शारीरिक विकास में अगर बाधा पड़ रही है तो उस पर भी आपका पूरी तरह से हमें एफर्ट्स पता
चलेगा।
डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों में कोई ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिसके बारे में हम अभी तक बिल्कुल सजग नहीं हो पाए हैं।
अच्छा, हमने आप पीछे आगे ADHD के बारे में चर्चा की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
हाँ जी।
आज नहीं, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हुए, काफी हमने इसके ऊपर चर्चा की है।
जी, बिल्कुल।
दूसरी, ऐसे तो देखो ना, हर बीमारी बच्चे को हो सकती है।
अच्छा।
बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। सिर्फ जब बच्चे को डिप्रेशन होता है तो उसके लक्षण अलग होते हैं।
ओके।
जैसे भी बड़ों को डिप्रेशन होगा तो निराशा होगी, भी बच्चों को डिप्रेशन आते तो बच्चे गुस्सा करते हैं। वो एक सिम्टम है। बच्चों को सिक्सोफ्रेनिया भी हो सकता है ना, उसी प्रकार के लक्षण होंगे मोर और लेस।
ओके।
परंतु मोस्ट कॉमन है, जैसे भी मेंटल रिटार्डेशन तो हमने सुना है कि भी मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, हमने देखे कहीं कि उनकी IQ बहुत लो है।
बिल्कुल।
परंतु एक बहुत नई बात अभी सामने आई है, जैसे जैसे मनोविज्ञान ने प्रगति की है, जिसको कहा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
ओके।
ना कि भी ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी है।
Okay.
LDB बोलते हैं इसको।
जी।
ना कि इन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है।
Okay.
उनको नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। परंतु विशेष रूप से कुछ बच्चे ऐसे होते कि जिनको सुनने में दिक्कत होती है।
अच्छा।
वो परफेक्ट पढ़ेंगे परंतु सुनने में उनको दिक्कत हो रही है। तो अगर ये समझ में ना आए तो फिर टीचर बोलेगी कि ये बच्चा ठीक से लिख नहीं रहा है।
पर डॉक्टर साहब, सुनने की प्रॉब्लम तो ENT के पास
नहीं, 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 ऐसे नहीं, नहीं, वो सुनने का नहीं।
हाँ जी।
कि ऐसे उसका ईयर्स तो नॉर्मल आएंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसको वो करेक्टली परसीव नहीं करता, लिख करके दो तो परफेक्ट परसीव करेगा। हाँ, उसको ऐसे प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे
हैं। और दूसरा एक है कि भी जिनको जब देखते हैं तो जैसे L है ना, वो उल्टा लिखेंगे भी उल्टा।
ओके।
तो वो जैसे कहेंगे कि भी उनको जब पढ़ रहे हैं तब वहां दिक्कत हो रही है।
okay.
एक मिरर इमेज के रूप में उन्हें दिखता है।
अच्छा। हाँ।
और एक स्पेशल इसमें है ऑटिज्म में कि और सबको ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है उनको। ना? और अभी ये इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बन गए सारे। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। माँ बाप ऐसा नहीं समझे कि ये बच्चा एबनॉर्मल है।
ओके।
कई बार उस पर गुस्सा करते हैं, क्यों नहीं समझ रहा है, क्या है, बुद्धू है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
खास करके जब बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जानबूझ करके ऐसा कर
रहे हैं। हाँ।
साथ ही साथ हम ये भी सोचने लगते हैं कि शायद ये नजरअंदाज कर रहा है।
हाँ, ये भी
शायद बहुत आलसी है।
हाँ, बस,
तो
बस।
ये सब जो सिम्टम्स है जो एज अ पेरेंट हमको समझने की जरूरत है कि शायद बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव
कर रहे हैं। या तो उसको एक मतलब कहेंगे कि छोटी सी कमी है। ऐसे बच्चों में एक तो विशेष चीज ये देखी है कि वो है ना अकेले अकेले रहते हैं।
अच्छा।
ADHD के बच्चे किसकी पिटाई करके आएंगे। वो हाइपर एक्टिव होंगे, कंप्लेन आएगी स्कूल से.
Okay.
अभी जो ये लर्निंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे है वो ये कंप्लेन आएगी कि बच्चा अकेला अकेला रहता है.
Okay.
फ्रेंड्स नहीं बनाता है. औरों के साथ मिक्स नहीं होता है. परंतु ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं अगर थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड किया जाए. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज तो ये है कि अगर ये ठीक से डायग्नोसिस हो जाए तो उन्हें विशेष फैसिलिटीज मिलती है.
अच्छा.
भी ज्यादा टाइम मिलता है. ऐसे गवर्नमेंट ने स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाई है कि भी कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं दे सकता है, परंतु स्पेशल गवर्नमेंट अपॉइंटेड हॉस्पिटल्स है, वहां जाकर के उनको टेस्ट करके एलडी का सर्टिफिकेट लेना है पेरेंट्स को.
ओके.
तो बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा एग्जाम में. Wow. और भी कई प्रकार की जो फैसिलिटीज है उनको मिल सकती है.
Okay.
तो एक तो ये बात, और फिर वो समझ के उस एरिया में थोड़ा काम करने की जरूरत है.
जी.
वो बच्चे के साथ थोड़ी पेशेंस चाहिए. जैसे भी जिनको ये है ना कि भी सुनने में तो स्लोली बोलो तो कैच भी करेगा.
Okay.
कुछ रिस्पॉन्ड भी करना है उसको टाइम लगता है थोड़ा. वो बिल्कुल नॉर्मल है बच्चे, सिर्फ उनको इनकरेजमेंट की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है. और अभी तो ना स्पेशलाइज्ड टीचर्स भी इसमें हो गए.
अच्छा.
हाँ, इवन जो काउंसिलर्स है वो स्पेशल काउंसिलर्स हो गए कि जो इस प्रकार से लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको ही ट्रेन करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स.
Okay.
और वो बच्चों को 100% नॉर्मल बना सकते हैं.
डॉक्टर साहब, उनके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं?
हाँ, जैसे भी एक तो मैंने कहा ना कि भी अकेले अकेले रह सकते हैं.
ठीक है.
वो लगेगा कि बच्चा बोर्ड से लिख के नहीं आता है.
अच्छा.
है ना, या तो लिख करके गलत आ रहा है. हो सकता है माँ बाप चिल्लाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे. परंतु उसको वह मिरर इमेज दिखाई दे रहा है कहीं.
ओके.
है ना, सुनने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में, कैलकुलेशन में, जो कहा ना डिफरेंट प्रकार से उसके, तो वो उसकी दिक्कतें आएगी.
ठीक है.
ना, हमको ये लगेगा कि वो फ्रेंड्स नहीं बनाता है. कोई भी कहेगा कि इसको अहंकार है.
हाँ.
इसको जैसे एटीट्यूड है, परंतु एक प्रकार से उसकी एक साइकोलॉजिकल जो सेट है ना उसमें, और वो एबनॉर्मल नहीं है.
ओके.
हाँ, थोड़ा भी उसे एबनॉर्मल नहीं समझना है.
जी. डॉक्टर साहब, इनके भी कुछ प्रकार हैं ऑटिज्म के भी?
एज में बहुत सारे हैं सर, ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है. मैंने कहा.
अच्छा.
कि भी कईयों को सुनने में दिक्कत है, लिख करके दो परफेक्ट हो करेंगे, है ना. कईयों को वो पढ़ने में दिक्कत है, सुनेंगे परफेक्ट हो. कईयों को कैलकुलेशन में दिक्कत है. तो क्या है, वो स्पेशलाइज टेस्ट होती है.
Okay.
जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो ही कर सकते हैं. और वो फाइंड आउट करते हैं कि भी इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है. फिर इस प्रकार के स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं.
Okay.
कि जो उसको बस इसमें ना पेशेंस चाहिए.
Okay.
अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए, और वो मेन स्ट्रीम के साथ वो बच्चा परफेक्ट हो जाएगा.
बहुत अच्छा.
और ये भी नहीं समझना है कि भी बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा.
हाँ.
उसको बचपन से ही वो करवाना है. शायद हो सकता है 3 साल तक पता ही नहीं चले.
अच्छा.
3 साल के बाद ही पता चलेगा. और जब पता चला फिर हमें उस पर पेशेंस से काम करके उसको एक नॉर्मल बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम में ऐड करना है.
सबसे मेन चीज जो मुझे समझ में आ रही है इसमें कि बच्चे को ये फील नहीं होने देना है कि आपको कोई बीमारी है.
परफेक्ट.
क्योंकि अगर बच्चे को ये पता चल जाए तो वो शायद डिप्रेशन में जाने के चांसेस
नहीं है. तो उन्हें बहुत कॉमन तो इन बच्चों में है कि स्वमान की कमी.
ओ.
उनको लगता है कि भी लोग मेरे से और बच्चे मेरे से मिक्स नहीं होते. और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे.
करेक्ट.
कई बार तो ये भी कि भी पेरेंट्स भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे.
करेक्ट.
तो है ना, एक लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है उनमें.
बिल्कुल. अगर उन्हें आम बच्चों के साथ में रखा जाए.
हाँ.
और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे वो बहुत ज्यादा अपने आप को फ्री महसूस करे.
हाँ.
और उस बीमारी पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाए तो वो बच्चे ठीक भी हो सकते.
हाँ, हाँ. और इसमें तो ना दवाइयां नहीं है.
जी.
एक्सेप्ट की कुछ सीरियस प्रॉब्लम.
अच्छा. दवाइयां
डिस्ट्रक्टिव होने लगा सपोज, है ना, बहुत गुस्सा करने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, बल्कि रेयर है.
Okay.
हाँ, इसमें कोई दवाई नहीं. एक्चुअली तो इसको बीमारी नहीं मानते.
अच्छा.
एज सच वो डिजीज नहीं है, है ना.
ओके.
उसकी एक लर्निंग प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी है सिर्फ, है ना, उसको डिजीज नहीं मान। ऑटिज्म डे भी होता है
जी,
जो स्पेसिफिकली कहते हैं कि इसको बीमारी नहीं मानना है। सिर्फ बस यहाँ अभी वो आइडेंटिफाई करना है, फिर पेशेंट से उसके साथ काम करना है, तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आइंस्टाइन को भी डिसलेक्सिया था।
अच्छा।
हाँ, कि वो जब छोटा था ना तो कॉइन गिनने में उसको दिक्कत होती थी।
ओके।
तो नहीं, जैसे कहेगा कि ये भी एक मैथमेटिक्स में उसको दिक्कत होती थी, आगे चल के इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया।
बिल्कुल। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि राइट काउंसलर, राइट टीचर एंड राइट पेरेंट्स,
एंड नो पेरेंट्स एजुकेशन, पेरेंट्स को बेचारों को पता नहीं है।
हाँ बिल्कुल। हाँ। उनको भी वो अवेयरनेस अगर हो जाए, मेरा मतलब है कि इन तीनों को ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। कि बच्चे को इस बीमारी से निकलने के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है।
हाँ।
बस उन्हें इतना सजग रहकर उस नॉलेज को ग्रास्प करने की जरूरत है कि किस तरह से बच्चे के साथ डील करना।
हाँ,
है।
हाँ। जैसे भी आजकल डिसेबल्ड को भी कहते हैं ना डिफरेंटली एबल, उनमें डिफरेंट एबिलिटी है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है कहीं, बट दे हैव डिफरेंट एबिलिटी। तो यहाँ भी इनको कुछ मेंटल चैलेंज हो सकती है, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज। वो तारे जमी पे फिल्म थी ना, जैसे सिमिलर केस
जी।
तो हमें समझना है कि उसको एक नॉर्मल, एक तो उसकी जो स्पेशल पोटेंशियल होगी वो बाहर आ गई, वो फिल्म में था, यहाँ पर हो सकता है कि वो बच्चा एकदम नॉर्मली डेवलप होगा।
ओके।
सिर्फ वो एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पर उसके साथ पेशेंस से काम करना है, उसको इनकरेज करना है, समझो थोड़ा भी उसने सीखा तो उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि देखो इसमें तुम काम करोगे ना तो ये चीज़ तुमको अच्छे से आ जाएगी, औरों के जैसे तुम बन जाओगे, तुम्हारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे, तो बच्चा एकदम नॉर्मल होगा।
वेरी नाइस।
और एक जो चीज़ पेरेंट्स को करने की ज़रूरत है कि विच कैन वर्क, इट इज डिफरेंट। भी जनरली भी हमारे, मेरे सेंटर में भी हम लोग डील करते हैं, है ना, जो मेरे काउंसिलर्स है वैसे बच्चों को डील करते हैं, उनकी अपनी टेक्निक्स है। कि भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनको कराओ, इनका अटेंशन स्पैन कम होता है।
ओके।
तो है ना, थोड़ा भी कराया फिर उनको दौड़ाओ, 5 मिनट भी सीखे बच्चे तो उनको डांस करा दो ताकि नहीं, क्योंकि वो ज्यादा समय अटेंशन नहीं दे पाते, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे में कराते। मैं समझता हूँ कि एक जो एक एस्पेक्ट जिस पर इतना वर्क नहीं किया लेकिन हमने देखा अच्छा सा रिजल्ट मिलता है
जी,
कि जब बच्चा जस्ट सो रहा है वो टीचर्स बताएंगे कि उसको क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस उसको बोलो।
ओके।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम एकदम ध्यान से सुन रहे हो, पूरा अटेंशन दे करके तुम सुन रहे हो, उस चीज को एग्जैक्टली तुम ग्रास्प कर रहे हो, या तुम फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हो, तुम्हारी ग्रास्पिंग एबिलिटी बढ़ गई है, तुरंत तुम उन वर्ड्स को ग्रास्प कर लेते हो, ऐसा रिपीटेडली पॉजिटिवली बोला जाए।
ओके।
भी वर्ड्स का है कि भी तुम एग्जैक्ट देख करके तुमको जो समझाया है पहले कि कौन से लेटर क्या है वो आपको रजिस्टर्ड हो गया है आपके माइंड में और उसी अनुसार आप उसे पढ़ रहे हो। कई बार तो मैंने फोन पे भी बोला है। नहीं, ये शोज आते हैं तो कहीं नहीं फोन में पूछते हैं, और फोन में कुछ पेरेंट्स को बोला कि ऐसे ऐसे आप सजेशंस दो, जब बच्चा सो रहा है तब, जब सवेरे उठे तब उसको सुला दो 5 मिनट और एफर्मेशंस दो। क्योंकि 5 मिनट सबकॉन्शियस एक्टिव है।
Okay.
दिन में भी जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसको थोड़ी देर सुला दो और वो एफर्मेशंस दो। तो पेरेंट्स ने कहा कि इससे ही फायदा हो गया।
Wow.
वो कोई डॉक्टर के पास नहीं गए।
Very nice.
है ना, तो क्योंकि वो तभी है ना, हमारा जो प्री कॉन्शियस कहते हैं ना या सबकॉन्शियस, वो प्री कॉन्शियस एक्टिव है।
Okay.
और वो एफर्मेशंस को कैच करता है उस समय।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक जितना मैं इस बीमारी को समझ पाई हूँ, कहीं ना कहीं ये एक बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस ये समझ ले कि ये बीमारी नहीं है।
बिल्कुल।
ये सिर्फ एक तरीके की डिसेबिलिटी है जिसे हम सही गाइडेंस के साथ में भर सकते हैं।
हाँ, बस।
अब डॉक्टर साहब, जो सबसे मेन चीज होती है कि एज अ पेरेंट या एज अ काउंसलर या वो बच्चा जो इस चीज से ग्रसित है, अगर वो मेडिटेशन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए, मेडिटेशन या फिर जो स्पिरिचुअल नॉलेज ब्रह्मा कुमारीज देते हैं, अगर उस नॉलेज को भी अपनाए, तो क्या इस बीमारी से निकलने में और ज्यादा आसानी होगी?
परफेक्ट। सबसे पहले तो पेरेंट्स
जी,
कि पेरेंट्स मेडिटेशन करे और बच्चे को कह के तुम बैठ भी जाओ, बच्चा शांति से बैठ जाएगा, है ना,
ठीक है।
और तब उसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, वो पॉजिटिव एनर्जी दे, तो उसकी इफेक्ट होगी।
ओके डॉक्टर साहब, ऑटिज्म के बारे में तो हम समझ गए, अब क्या और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में हो जाती हैं, मन की बीमारियां, जिनसे बाहर निकलने में हमें अगर आपकी मदद मिल सके तो बहुत अच्छा होगा।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उनको डिप्रेशन हो सकता है ना, बाइपोलर भी हो सकता है बच्चों को, सिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, सब बीमारियां हो सकती है। एक जिस पर और थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहिए, जिसको का एन्यूरेसिस, कि जो बच्चे है ना, कि समझो कि एक दो साल तो ठीक है, लेकिन 3 साल का 4 साल का बच्चा हो गया फिर भी नहीं नींद में पेशाब कर लेता है कि जो लेवल पर वो नहीं होना चाहिए, कई बार आगे आगे भी बढ़ता है।
अच्छा,
है ना, वो भी एक प्रकार से वो ट्रीटेबल है। ये नहीं समझना है कि भी इसको ट्रीट नहीं कर सकते, वो इजीली ट्रीटेबल है। कुछ तो ट्रेनिंग से भी वो ट्रीटेबल है, और उसका कहीं ना कहीं कॉज है ना, अटेंशन सीकिंग है।
अच्छा,
हाँ, बच्चे को अनकॉन्शियसली लगता है कि ऐसा होता है तब माँ बाप ध्यान देते हैं, नहीं तो ध्यान नहीं देते हैं। या तो नहीं, एक मतलब एक पॉसिबिलिटी है, कुछ ट्रेनिंग से भी वो इम्प्रूव होते हैं और मेडिसिन भी दे सकते हैं ना, अगर लगे कि भी काफी बच्चा बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया 8 साल का हो गया फिर भी ये दिक्कत हो रही है, तो मेडिसिन भी दे सकते हैं, बहुत सारी और चीजें भी है उसमें, है ना, वह एक कॉमन चीज है। और देखो तो कि जब ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सब नॉर्मल बच्चे होते हैं कि जिनकी आईक्यू एकदम लो है, है ना, फिर उनका ट्रेनिंग डिफरेंट है। अभी ऑटिज्म और इसमें पूरा आसमान जमीन का फर्क है कि उनकी आईक्यू समझो 50 है 60 है, अदरवाइज वो नॉर्मल लगते हैं, तो उनको डेवलप करना, उनकी परवरिश करना फिर डिफरेंट चीज है। एक सेरिब्रल पाल्सी होती है कि बर्थ के समय कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है, जब ने फोर्सेप से खींचते हैं, गले में कुछ लग गया, तो सेरिब्रल पाल्सी, वो भी तुरंत मालूम नहीं पड़ता है जन्म के समय।
अच्छा।
बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसके बारे में उसकी जानकारी होती है।
ओके।
ना, जी जी,
तो डॉक्टर साहब ये सभी बीमारियां जो मन की बीमारियों के अंदर आते हैं, सभी बीमारियों का कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल, हाँ।
बच्चे की संकल्प शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, इन सभी बीमारियों के अंदर में, चाहे वो बड़ों की बीमारियां हो मन की, चाहे वो बच्चों की है। और अगर संकल्प शक्ति कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में आई थिंक मेडिटेशन से बेटर उपाय कुछ भी नहीं
है।
तो बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारियां अगर हो रही है तो बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी और काउंसलर को भी, क्या इन सभी लोगों को मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से शायद इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं?
डेफिनेटली 100%, है ना। आपने बहुत अच्छा एक नया पहलू आपने कहा कि भी काउंसलर भी मेडिटेशन करे।
करेक्ट।
नहीं तो काउंसलर कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं और काउंसलर बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं।
अच्छा,
ऐसे कोर्ट में भी केस गए।
ओके।
कि बच्चे को ज्यादा ही पीट दिया काउंसलर ने, क्योंकि वो इम्पेशेंट हो गया, है ना
जी।
तो इसलिए ये परफेक्ट है कि भी काउंसलर भी मेडिटेशन करे, तो एक तो उसमें सिंपल चीज तो पेशेंस आएगी।
करेक्ट।
है ना, एम्पथी आएगी।
करेक्ट।
भी ये बच्चे को मुझे डील, तब तो मेरे पास लाए हैं। पेरेंट्स अपने आप पूरा उसे नहीं मैनेज कर पाते, इसलिए मेरे पास आए, और मुझे जो साइकोलॉजी का नॉलेज है
जी,
है ना, जिसमें मेरी एक्सपर्टी है, उसको मुझे यूज करके एम्पथी को डेवलप करना है यहाँ पर, है ना। तो बहुत अच्छी बात। इसमें मेन चीज तो ये कहेंगे कि वो बच्चों को मोटिवेशन, मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा कि उसे मोटिवेट करने में।
ओके।
हर बात में, जैसे एन्यूरेसिस की बात है, जब बच्चा सो रहा है तभी उसको ये सजेशन दिया जाए कि भी जैसे ही तुम्हारा ब्लैडर फुल होगा, है ना, तुम्हें पेशाब की इच्छा होगी तो तुम जाग जाओगे और वॉशरूम में जाके पेशाब करोगे। अगर ये सजेशन बार 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 जब बच्चा सोने लगा है तब उसके कान में दिया जाए, इवन डे टाइम में भी जब सो रहा है तब भी ये उसको दिया जाए, तो ऑटोमेटिक उसका जो प्री कॉन्शियस है वो उसको जगा देगा उस समय। नहीं, उसके कई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी होते हैं।
Okay.
उससे तो ये टेक्निक बड़ी नेचुरल हो सकती है।
Correct.
ना, कि वो एफर्मेशंस के द्वारा वो इफेक्ट मिले। या तो बच्चे को जो मैंने कहा कि उसके पीछे साइकोलॉजिकल है अटेंशन सीकिंग कि मेरा ध्यान नहीं रख रहे, तो वहां पर भी उसको एफर्मेशंस दिए जाए ना कि भी कितना कितने तुम अच्छे हो, तुम पॉजिटिव हो, है ना, पेरेंट्स लव यू सो मच, नो यू आर अ गुड चाइल्ड, ऐसे एफर्मेशंस भी उस समय दिए जाए, तब भी उसके अनकॉन्शियस में सबकॉन्शियस में यही बात जाएगी, है ना। और जो कहा कि वो बच्चे को मोटिवेट करने में पेरेंट्स खुद मेडिटेशन करे और बच्चे को बिठा दे सिर्फ,
okay.
छोटे बच्चे बैठ जाएंगे। मुझे भी याद है, मैं छोटा सा था, हमारे गांव जाता था तो हमारे दादा लंबा लंबा वो मेडिटेशन करते थे,
अच्छा।
वडनगर करके के मेहसाणा के पास,
अच्छा।
तो हम लोग एक एक घंटा बैठ जाते थे, ऐसा बोलो तो नहीं बैठेंगे, है ना, कि भाई नाना जी कर रहे तो हम दो दो घंटा भी उनके साथ पूजा पाठ के लिए बैठ जाते थे।
अरे वाह।
तो ऐसे नहीं, वो बच्चे बैठ जाएंगे, मेरा कहने का भाव यह है, और फिर वो मेडिटेशन के वाइब्रेशन उसे दो,
ओके।
और दूसरा जैसे कहा कि जब वो सो रहा है तब वो एफर्मेशंस भी दो, थोड़े से 3-3.5 साल के हो तो फिर आप सिखा भी सकते,
ओके।
है ना, कई बार हम नहीं लेते इंटरेस्ट, बच्चे सीख के आते। मेरी भतीजी है कि जो उनको तो लगता था कि भी क्या जरूर, कि बच्चा तो छोटा है 2.5 साल का है, लेकिन एक दिन पड़ोसी से सीख के आया,
अच्छा।
कि कैसे पूजा करने की,
okay.
है ना। तो भी देखो भी पड़ोसी ने सिखा दिया, आप सिखाना शुरू करो तो आप भी सिखा सकते हो।
यहाँ पर डॉक्टर साहब मुझे एक आइडिया आया है, अगर स्कूल्स में बच्चों को, सभी बच्चों को मेडिटेशन को किस तरह से अपनी जिंदगी में लाना है, अगर वो सभी सीख जाएं, तो इन तरह की जो भी ये मानसिक बीमारियां हैं इनसे ये बच भी सकते हैं।
डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली ना, अभी प्रेयर तो कराते ही है,
करेक्ट,
परंतु मेडिटेशन भी कराए उसके जो एक एफर्मेशंस के रूप में,
करेक्ट।
जैसे ना प्रेयर में तो हमको ये लगता है कि भी हम प्रे कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं,
जी,
परंतु मेडिटेशन की जो पॉजिटिव थॉट्स है,
जी,
जैसे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भी मैं सभी को आत्मा के रूप में ही देख रहा हूँ,
जी,
नहीं, मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट भी आत्माएं हैं, वह भी शांत स्वरूप है, नहीं, ऐसी जो बातें है वो उनको बचपन में बताई जाए, समझो नर्सरी में बताई जाए, जूनियर केजी में बताई जाए, तो भी वो तो जल्दी करेंगे, और लोग साथ देरी से करें, और एक बार वो स्टेट ऑफ माइंड बन गया तो इन बीमारियों से डील करने में भी उन्हें जल्दी राहत मिलेगी, है ना, उनको हेल्प मिलेगी।
डॉक्टर साहब, आज का जो ये पूरा एपिसोड रहा है, जो ये जर्नी रही है, इसके अंदर हमने कई सारी मानसिक बीमारियां जो बच्चों के अंदर होती हैं उस पर डील किया। हमने जाना कि बच्चे जो होते हैं वो सभी एक समान ही होते हैं, बस थोड़ी सी कोई ना कोई कमी के कारण वो बच्चा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसके लिए जिम्मेवार होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारे काउंसलर्स और हमारे टीचर्स। अगर ये तीनों मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है,
तो उनको डील करने
में, उनके साथ डील करने में
टेक्निकल नॉलेज तो उनके पास है,
जी,
परंतु जो कहेंगे कि एक स्पिरिचुअल भाव आना चाहिए, एम्पथी आनी चाहिए,
करेक्ट,
वो आने में स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज की हमारी जो जर्नी रही है ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमको ये जानने की जरूरत है कि बच्चों के होलसम विकास के लिए उनके मन पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरह से जिंदगी को डील कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी ऐसे सिम्टम्स है बच्चों के अंदर में जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी है, तो आप प्लीज उस चीज को नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है। या तो किसी काउंसलर के पास उन्हें लेकर जाइए, या कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास जिनके पास आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बनी आसान। ओम शांति।